संसार से कोई वस्तु नहीं चाहते हैं, ऐसे महापुरुषियों को भगवान की भक्ति है। और वो यदि हरि कथा कह रहे हो, कैसी निरंतर अपने आप झर रही है, ऐसा झरना जो कभी समाप्त होने वाला नहीं, उनके मुख से निकलना ही। और उसमें यदि कोई विषयी व्यक्ति भी है, कोई मनुष्य जन्मुक्ति भी जाने वाला है, जो संसार के सुखों को भी जाने वाला है, और जो परम भगवत भक्ति जाता है, सब लोगों के लिए यह अचूक कराम बाण गवाह है। भगवती इसको नहीं जो सुनने वाला है, नहीं सुनता है, आत्मघात। आत्मघात इसको कहते हैं जैसे पीस खाकर के आदमी मर जाते हैं, अपने आप फांसी लगा लेते हैं, ये आत्मघाती करते हैं। इसके पीछे भी बड़ा आत्मघाती वो है, उसके पास में हरी कथा आई और वो सुन नहीं रहा, उसका निरादर करता है, तो इससे बढ़कर के आत्मघात नहीं होता। कबो कनौती जन्म आएंगे, इसके बाद मनुष्य जन्म होगा भी नहीं, कोई चीज नहीं है रहने की नहीं। इसलिए जल्दी से जल्दी भगवान का नाम करना चाहिए, सारी आकांक्षाएं भी दूर हो जाएगी, पाप राशि भी दूर हो जाएगा और भगवान के चरण में चित्त लग जाएगा और जीवन भर के लिए भी सुखी रहेंगे, इसके बाद में भी सुखी रहेंगे और अंत में सब जीवन भर के इसके चक्कर से निकल जाएंगे। इस मैं आप लोग विश्वास करती हूँ। अभी इस बात में करना चाहिए इस विषय में जो उपदेश है और जो लीला कथाएं संक्षेप में कुछ कहें, इसके बाद में मैं कृष्ण की एक सुंदर मधुर लीला का मैं वर्णन करके आज का सत्र समाप्त।
गुरुवीन्द्रवरचन्द्राय राजाय तदाय कृष्णाय कृष्णवत्ताय सर्वत्ताय नमो नमः।
अभी अभी आपने श्रीमद्भागवत की कथाएं सुनी हैं, भगवान नाम की महिमा सुनी है और संसार में सबसे बड़े दया परम दया जो भगवान से नहीं है, जिनकी आराधना करने पर कामना हो चाहे न हो, जैसे भी उनके आश्रय में जाए, उनकी आराधना करें, भजन करें, तो देव सब कुछ दे देते। अभी आपने ध्रुव चरित्र से श्रवण किया है, भगवान से हरि के चरण कमल में ध्वज वज्र अंकुर आदि बहुत से चिन्ह आपने सुना है कि भगवान के चरण कमल में अंकुश है। उस अंकुश के द्वारा मतवाले हाथी को रोका जाता है। ऐसे हमारे मन रूपी जो पागल हाथी हैं, संसार की कामनाओं में डूबे हुए, भगवान के चरणों में कैसे भी आश्रय ले, प्रभु का नाम ले, तो उनके चरणों के अंकुश को रोक लेता है, वसूल कर लेता है और उसके द्वारा प्रभु के चरणों में भक्ति हो जाती है, समस्त कामनाओं को तय करके अंत में परावृत्ति लाभ करते। इसलिए कैसे भी हो प्रभु का नाम कीर्तन निरपराध निष्कपट हो करके हमें प्रभु के आश्रम में जाना चाहिए, यही जीवन का मार्ग उपाय। अन्यथा अपराध के कारण हमारी संसार तो था, हम भगवान को भूल गए, इसी संसार में आए और उसमें भी हम भोगों में आसक्त और अज्ञान मोह में हम डूबे। इसलिए पुनः पुनः चेतना देने के लिए शास्त्र ग्रंथ भगवान से मूर्ति के रूप में, श्री विग्रह के रूप में भगवान स्वयं अनुग्रह करके उनके करुणा मूर्ति गुरु जी को भेजते हैं, साधु संतों को भेजते हैं कि किसी प्रकार के हमारे प्रति उन्मुख हो जाए, भजन साधन करते हुए संसार से पार होकर मेरे चरणों में आ गए। इसलिए विज्ञान और वैराग्य की बातें कही है कि यह संसार कैसा है। आपने अभी श्रवण किया है श्रीमद् भागवत में ऐसी एक कथा आती है कि प्राचीन वर्ष महाराज जो भारतवर्ष के बहुत बड़े एक राजा, उन्होंने सारा भारत भूमि को यज्ञभूमि बनाई, ब्राह्मणों के उपदेश से उन्होंने यज्ञभूमि बना दी, सबका आदर किया कि सभी जगह यज्ञ और यज्ञ में पशु की बलि हुई, बलि भी दी गई। नारद जी महाराज उनके दरबार में आए कि ऐसे पशु पशुओं की हत्या करके कौन सा धर्म होता है? महाराज जी से पूछा, महाराज आप सब प्रकार से कुशल हैं? बोले हाँ कुशल है। तो हमारे एक प्रश्न का उत्तर आप, जो आपने इतने पशुओं की हत्या की है जिसकी कोई गिनती नहीं, कोई ठिकाना नहीं, तो इससे आपको क्या कल्याण होगा? बोले क्यों, ऐसा तो ब्राह्मणों ने उपदेश दिया और हमने पशुओं की बलि देने के लिए आदेश दे दिया और ऐसे ये क्यों होता रहा? तो उसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो नहीं जानता, और इसमें स्वर्ग मिल जाएगा यही जानता हूं। महाराज जी, इससे स्वर्ग नहीं मिलता है, पशुओं की आपने जो हत्या की है वे भी तो हत्यार बन करके आपको भी मारेंगे, इसलिए इसको आप देखिए, पानी लेकर के मंत्र पढ़कर उनके ऊपर फेंक। देखा कि प्राचीन महाराज पर लोक में जा रहे हैं, जितने पशुओं की हत्या की थी देर सब तलवार लेकर खड़े हैं, खटा खट काटते जा रहे, छट पटाने लगे। उन्हें कि अरे ये क्या, बहुत देर तक ऐसे छटपटाहट की स्थिति बने रही, अंत में पानी फेंक करके फिर उनको शांति दिया। बोले महाराज आपने क्या देखा, ये तो महान अर्थ हो गया है कि जितने पशुओं की हत्या की देर से उन्होंने मारने को तैयार थे और सब मारते जा रहे। तो नारद जी महाराज बोले, महाराज प्राणियों की हिंसा करते हुए कोई धर्म नहीं होता है, एकमात्र भगवान की आराधना से ही सारा कर्तव्य पालन होता है, अन्यथा और ये सब कुछ विडंबना मात्र है, लोग ठगने की विद्या है। जिस संसार में सुख भोगने के लिए आते हैं, प्राणी शरीरों में घूमते घूमते मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है। इसके 9 दरवाजे हैं और असंख्य खिड़कियां हैं, ये सुंदर राजमार्ग है, सुंदर राज भवन के समान बताया। इसी के अंदर प्रवेश करके भी बुद्धि के साथ सम्मिलित हो करके भोगों को भोगते हैं इंद्रियों के द्वारा। इसलिए उपाखंड में बताया कि ये 9 द्वार विशिष्ट ये शरीर है राजभवन, उस राजभवन के अंदर में एक राजा ने प्रवेश किया जिसका नाम है पुरंजय। पुरंजय राजा प्रवेश करके देखा कि कोई है नहीं, क्या बात, अंतपुर में चले गए, एकदम अंदर मारू। वहां देखा एक सुंदरी 16 की युवती है, 11 सैनिक उनके अंदर अक्षक हैं, कुछ दासियां उनकी सेवा करती हैं। उससे पूछा, ये देवी आप कौन, आपका परिचय क्या है, यहाँ और किसी को दिखाई नहीं दिया, बड़े मुश्किल से आप दिखाई दे। तब उस समय उसने कहा कि मेरे माता पिता का नाम तो अविज्ञात है, मुझे पता भी नहीं, मैं बचपन में थी कि उस समय माता पिता चले गए और यहाँ पर कोई नहीं रहा, ये दासियां मेरी सेवा करते हुए उसको पालन पोषण किया, मैं बड़ी हो गई और यहाँ पर कोई भी आश्रय कोई सहारा नहीं, इसी तरह से मैं जीवन धारण कर रही। तो बड़ी सौभाग्य की बात है, जब आप आए हैं तो इस राजभवन को अलंकृत करें और मेरा पाणि ग्रहण स्वीकार करें। तो वही बात थी, राजा ने वैसे ही स्वीकार कर ली और अंत में उनके साथ पाणि ग्रहण करते हुए पति पत्नी के रूप में रहने लगे। कुछ दिनों तक इन्हें भूल करते रहे, ऐसे समय में कालकन्या जरा जा रही। नारद जी से पूछा, प्रभु हमारे योग्य पति कोई बन नहीं रहे हैं, आप मेरे लिए उपाय बताइए। नारद जी बोले कि देखो मैं तो नहीं कह सकता, एक काम करो, जाओ महाराज जी के पास में जाओ, मैं तुम्हारे लिए कोई सलाह देंगे। तो कालकन्या जरा जो महाराज जी के पास में पहुंची तो जो महाराज जी ने कहा कि देखो ऐसे तो नहीं होगा, तुम्हें कोई चाहिए नहीं, इसलिए तुम ऐसा करो मेरे कुछ सैनिक ले जाओ और उसके द्वारा जिसको चाहो तो अपना पति बना लो। कालकन्या जरा ने वही किया कि ज्वार प्रज्वार मोह महामोह तमो दिन और रात मिला करके 360 गंधर्व सेना और गांधर्व की सेना ले ली। इस तरह से चलते हुए वह जरा पूरे राजा के उस राजभवन को घेर किया और बहुत दिनों का युद्ध होता रहा। होते होते पुरंजन राजा के कुल 11 सैनिक और इनके 1000 सैनिक कहां से लड़े, लड़ते लड़ते और इंद्रिया ये सैनिक सब पीछे हटे इतने में कालचंदा जरा ने राजा को पकड़ लिया
जरा से
और पकड़ करके उसके साथ हुहुर करने लगे। तो ये कालचंदा जरा जो है पुरंजन राजा माने ये जीत हम सभी जीत संसार में भ्रमण करते करते 84 लाख शरीरों में भ्रमण करते करते मनुष्य शरीर में आए सुंदर नौ दरवाजे विशिष्ट सुंदर राजभवन इसके अंदर में प्रवेश करके बुद्धि के साथ मिलित होकर के हम संसार में सुखों को भोगने लगे। ऐसे समय में कालचंदा जरा जो आदि व्याधि रोग शोक अनेकों प्रकार के बीमारी के रूप में वह जरा उपस्थित
जरा मैंने बुढ़ापा
जो बुढ़ापा है उसके साथ अनेकों प्रकार की व्याधियां इस तरह से वह बुढ़ापा पुरंजन राजा को घेर दिया उसकी इंद्रियां सब शिथिल हो गई। जब मनुष्यों की आयु 50 वर्ष की हो जाती है इसके बाद में धीरे धीरे जरा घेर लेती है बुढ़ापा आने लगता प्रवर काल आता है इसके बाद में वार्धक्य की स्थिति तो बुढ़ापा माने हुए जरा जरा ने घेर लिया तो बुढ़ापा की स्थिति आ गई। इंद्रियां शिथिल हो जाने पर रोग बीमारियां अनेकों प्रकार की कठिन कठिन बीमारियां आ जाती हैं और जीवन भर कमाए हुए जो कुछ पुरुषार्थ होता है रुपए पैसे धन दौलत उन बीमारियों में समाप्त हो जाता है। इसी तरह से बुढ़ापे की स्थिति में युवावस्था के किए हुए काम धाम उसी की चिंता करते हुए हा उतार करते 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 शरीर को छोड़ते जैसे जैसे चिंता होती है वैसे वैसे शरीर छूटता है। पुरंजन राजा पुरंजनी अपने पत्नी की चिंता में डूब करके और उसी के याद में शरीर छोड़ा दूसरे जन्म में राजकन्या होकर के जन्म
हुआ स्त्री की चिंता करेंगे
तो स्त्री की चिंता करते करते नारी होकर के जन्म लिया तो राजकन्या होकर के जन्म ली तो उस समय दैववश किसी एक मलय धर राजा से विवाह हुआ परंतु वह राजा था परम भगवत भक्त उनके संगत में उनकी सेवा करते करते वैष्णव की गुरु के रूप में पति के रूप में सब प्रकार से उनकी सेवा की। पर जहां कहीं ऐसे संतों का प्रसंग होता है सभाएं होती हैं वहां जाया करते राजा के साथ में तो इस प्रकार कुछ भक्ति में अग्रसर होते होते राजा के साथ अंत में वन में चले गए। तो राजा अब ध्यानस्थ तो होकर के भगवान का चिंतन करते करते शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने पर वो पुरंजनी रानी बड़े व्याकुल होकर के रोने लगी पति के वियोग में। ऐसे समय में जंगल में रो रही है तो कौन उसे बचाए कौन उसे देखे परंतु भगवान की भक्ति की थी तो भगवान वहां पर आए इस प्रकार ब्राह्मण वेश धारण करके वहां उपस्थित और उसे सांत्वना देने लगे। सांत्वना देते हुए समझाया पुरंजनी तुम्हें याद है पहले जन्म में तुम पुरंजन राजा और इस जन्म में तुम पुरंजनी रानी बन करके आए देखो न तो तुम राजा है और न तुम रानी न पुरुष है न स्त्री हम दोनों मानस सरोवर के राजहंस के समान जो कमल के मृगाल को खाते थे आस्वादन करते अर्थात हम भक्ति रथ में तुम भक्ति रथ में डूबी डूबा हुआ और मेरे प्रेम में डूबा हुआ परंतु मुझको भूल करके जैसे ही तुम संसार को सुख भोगने के लिए आया तो ऐसे ही शरीर में आसक्त हो करके मोहग्रस्त होकर अनेकों प्रकार के दुख कष्टों को भोगा। बुढ़ापा की स्थिति में अनेकों प्रकार की रोग बीमारियों में जराग्रस्त हो करके अनेकों दुर्दशा भोगा और स्त्री की चिंता करते करते दूसरे जन्म में स्त्री होकर के जन्म लिया। इसलिए देखो न तो तुम पुरुष है न स्त्री तुम आत्मा तुमने भगवत भक्ति की थी और इनकी सेवा की इस वजह से आज तुम्हें मैंने दर्शन दिया। अब इस संसार में बिना भक्ति के कुछ भी नहीं है भगवान की आराधना की जीव है ना आत्मा नहीं वो आत्मा नहीं वो कुमार नहीं वो स्त्री आत्मा पुरुष भी नहीं स्त्री भी नहीं और न पुरुषक भी नहीं है वो क्या है भगवान का दान भगवान का सेवक इस बात को भूल जाने पर ये संसार में भ्रमण होता है। इस प्रकार उत्तान पाद राजा के तो नारद जी की कथाओं को सुन करके प्रिय प्राचीनवर महाराज सब उनको विवेक हुआ और अंत में सब कुछ छोड़ करके भगवान की आराधना उस अनुपात राजा के वंशचर वंश कथाओं का वर्णन। इसी प्रकार प्रियव्रत महाराज उनके भाई महाभाई बने, उनके वंश में ही बड़े बड़े राजा महाराजा भगवान ऋषभ देव हुए। ऋषभ देव के सौ पुत्र की कथा आपने सुनी है, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र भरत महाराज जी हुए और सतरा पृथ्वी के राजा समस्त राज्य पाठ युवा काल में उन्होंने तय किया और भगवान की आराधना करने के लिए चले गए। गंडकी नदी के लिए पुनः आश्रम में जाकर के भजन साधन करने गए। प्रतिदिन नदी में स्नान करते सालोग्राम किला को उठा करके लाते और पूजा अर्चना करते। इसी तरह से पूजा अर्चना और प्रभु का भजन करते करते भाव में आविष्ट हो गए, बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त हुई। कहा कि कोई व्यक्ति भजन साधन करता है, भजन साधन करते करते यदि जीवन में कोई अपराध हो जाए, प्रभु का नाम कीर्तन करना अति सहज सुगम उपाय है, परंतु नाम के साथ में नामापराध से भी बचना होता है। साधु निंदा, गुरु अवज्ञा, श्रुति शास्त्र की निंदा, अर्थवाद, हरिनाम की कल्पना, अनंत शुभ कर्मों के साथ में हरिनाम को समान ज्ञान करना, आलस्य प्रमाद युक्त होकर के हरिनाम कहना, नास्तिक पाखंडी को उपदेश देना, ये समस्त अपराध होता है। इसलिए कदापि साधु संतों की निंदा नहीं, गुरु जी की अवज्ञा नहीं करें, शास्त्रों की निंदा नहीं हो। हरिनाम एक कल्पना मात्र है, भगवान निराकार निर्विशेष है। ये नाम तो ये कल्पित नाम, जैसे हम लोग बच्चों का नाम रखते हैं ऐसे ये नाम रखा गया वज्र, तो ये कल्पना मात्र है। ऐसा जानना समझना ऐसे कहना अपराध होता है। ये हरिनाम के महिमा जो इतनी वर्णन की है कि एक कृष्ण नाम में जब पाप भरे पापी इंसान धुनाई तो पाप, एक कृष्ण नाम में जितना पाप दूर होता है कि पापियों का साध्य नहीं कि उतना पाप कर ले। तो ये समस्त केवल प्रशंसा मात्र लिखी, ऐसा समझना भी अपराध होता है। इसलिए इन अपराधों से बच करके हरिनाम कहना चाहिए। भगवान ने भक्तों को सिखाने के लिए दिखाया कि भरत महाराज की तो कोई अपराध या किसी प्रकार कुछ नहीं था, परंतु लोक शिक्षा के लिए दिखाया कि ऐसे उच्च स्थिति पर पहुंच जाए और उच्च सोपान पर भजन के चरम सोपान पर पहुंचे हुए व्यक्ति यदि किसी प्रकार कोई अपराध करता है, त्रुटि विच्युति होती है, तो उसके द्वारा बहुत नीचे गिर जाते। भरत महाराज जी को कोई अपराध नहीं था, परंतु लोक शिक्षा के लिए दिखाया कि भरत महाराज जी ये हिरण शिशु के प्रति प्यार किया, उसको पाला पोसा बड़ा किया, उसको खिलाया पिलाया, उसके प्रति उनका स्नेह चला गया, स्नेह ममता इतनी बढ़ती गई कि भजन साधन छूट गया। अब उसी में आ गए, अरे हिरण का दल आया और उसमें वह हिरण निकल के चला गया। चले जाने से उसके चिंता में खोए हुए आविष्ट हो करके ढूंढते ढूंढते परेशान और शाम का समय और बड़े विषण हो करके बैठे हुए, ऐसे समय में काल उपस्थित हुआ। हिरण की चिंता में डूबे हुए आविष्ट है कि उसी प्रकार काल भी आया तो उस काल के गाल में समा गए कि हिरण की चिंता करते करते दूसरे जन्म में हिरण हो करके जन्म। इसी प्रकार हिरण शरीर को भी छोड़ा तो तीसरे जन्म में ब्राह्मण कुल में एक जन्म हुआ। पूर्व जन्म की स्मरण याद रही तो स्मरण बन रहने से जाते स्मर बना, इसलिए बोले कि अब हमें किसी से बात नहीं करनी, न हमें संसार की किसी वस्तु के मुंह में नहीं जाना है और न आसक्त होना है। इस प्रकार भरत महाराज जी संसार में आसक्त नहीं हुए, न किसी से बात की, जड़ भरत बन करके रहे। एक दिन की बात है कि रघुवर महाराज उन्हीं के वंश के राजा किसी साधु आश्रम में जा रहे थे कि कुछ तत्व दर्शन जानने की इच्छा थी। पालकी में जा रहे थे तो कहा लोग अब चलते चलते एक को बुखार आ गया, चल नहीं पाए। तो उस समय राजा ने कहा अच्छा जाओ किसी बेगार को पकड़ करके लाओ। तो ये लोग ढूंढते ढूंढते देखा कि ये खेती में बैठा हुआ आदमी है। तो भरत महाराज को दिखाई पड़ा तो उसने पकड़ करके ले गए, पालकी में लगा दी, बोले कि चलो चलते रहे। परंतु रास्ते में चलते चलते कहीं कीड़े मकोड़े हैं, चिट्टियां हैं, देख सुन करके चलते चलते पालके हिलने ढुलने लगी। तो राजा ने कहा अरे ऐसे कैसे हो रहा है? बोले कि ये नया आदमी ठीक ढंग से नहीं चलता है। बोले वो तुम दुबला पतला है, खाया पिया नहीं है, बहुत कमजोर बना है, जानता नहीं है मैं व्यवसाय आया हूं, अभी अच्छी तरह से दंड मिल जाएगा तब केस होगा, सावधानी से। ऐसे कहा परंतु चलते चलते बजे थे, भेज के राजा बिगड़ गए। बोले कि अरे जानते नहीं हो, अभी तुम्हें दंड दूंगा, ऐसे ऐसी सारी बातें कही। उस समय भरत महाराज जी ने अपने मुंह खोला, बोले कि हे राजन, कौन राजा और कौन प्रजा होता है, कौन किसको शासन करता है और कौन किसको शासन करने वाला है, कौन किसका शासन हो सकता है और कौन मोटा कौन पतला, आत्मा न तो मोटा है न पतला है, इस बात को जाने तो क्यों तू। इन सारी बातों को सुन करके राजा बोले कि पालकी उतारो। उतर करके बाहर आए, देखा कि उनके गले में जनेऊ पड़ा हुआ है, फटे पुराने ये कपड़े, सारा शरीर धूल मिट्टी से मैल जम रहा है। तो उस समय उनको प्रणाम करते हुए बोले कि महाराज, हे ब्राह्मण आप कौन, देखने में लगता है कोई ब्राह्मण है, कहीं आप कपिलदेव तो नहीं है, कहीं आप महामनीषी तो नहीं है, आप कौन है, मैं इन्हीं बातों को जानने के लिए जा रहा था, कृपया आप मुझे बतलाइए और आप अपना परिचय। उस समय भरत महाराज जी बोले कि महाराज अहम पूरा भरतो नाम राजा, मैं पूरा काल में भरत नाम का राजा और हिरण के प्रति आसक्त होकर के मेरी दुर्दशा बने कि हिरण होकर के जन्म लिया, तो इसलिए जन्म में स्कूल में आया ब्राह्मण को, किसी प्रकार मैं मोह में आसक्त नहीं हुआ, न जीवन भर किसी से बात है की केवल आपसे बात करने की इच्छा प्रकट की, इसलिए कि हे राजन ये शरीर न दो, ये शरीर पांच भौतिक मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश का बना हुआ पांच भौतिक शरीर, चौबीस तत्वों का ये शरीर जो अस्थि मांस में वज्र शुक्र शनि सजा सात धातुओं से बना हुआ, इस शरीर के अंदर कफ पित्त वात ये तीनों स्थिति है, अरे ऐसे रक्त मांस का पुतला इस शरीर के प्रति जो अहंकार अभिमान यही बंधन का कारण होता है, और उस अहंकार अभिमान में डूब करके लोग कर्म करते हैं, लोग भोगों को भोगने के लिए, सुख भोगने के लिए, धन दौलत कमाने के लिए जो चलते हैं, परंतु लोगों की स्थिति कैसे होती है कि धन कमाने के लिए चले, रास्ते में चलते चलते घना घोर जंगल में पहुंचे और लुटेरों ने उसे लूट लिया, अब कहां जाए क्या करें, जंगल में घूम रहे हैं भटक रहे हैं ऐसी स्थिति, और उसमें घूमते घूमते दूसरों की भी ऐसी स्थिति बने, तो समय साथ में मिल करके बोले कि चलो हम लोग साथ में रहेंगे, उसी तरह से रहते रहते घर लिए भी बना ली बसा ली और उसी तरह से संसार धर्म चलने लगते, अंत में काल उपस्थित होता है कि जब एक दिन उस जंगल में घूमते घूमते बाघ उसका पीछा करता है, तो उस समय दौड़ता हुआ गया कि अब पेड़ पर चढ़ने को समय नहीं, एक कुएं के अंदर में उतर गया, देखा कि कुएं की मुंह में अब पेड़ की डालियां उग गई हैं, झाड़ियां आ गई, तो उस पेड़ की डाली को पकड़ करके उसी में लटक गए, कुएं में पानी नहीं है, नीचे था हाँ फंस फंस कर रहा है, और ऊपर से बाघ आया एकदम गर्जन करता हुआ हाँ हाँ कर रहा है खाने को, ऐसे स्थिति में जिस पेड़ की डाली को पकड़ करके लटक रहा है कि उसको भी जो चूहा अब काटने लग गए कुरेते हैं, और जिस डाली को पकड़े हुए हैं उस डाली में मधुमक्खी की छत्ता लगी, मक्खी चारों ओर से घेर लिया काटने लगे, उस स्थिति में सोच रहे हैं कि अब तो मरना है अनिवार्य है, ऊपर मृत्यु नीचे मृत्यु जाने का कोई उपाय नहीं, चलो अब मरते मरते मधु चमक रहा है शायद टपल रहा है तो थोड़ा पी लो, पी करके ही मर। तो ऐसे ही ये संसार, हे भरत महाराज, हे रघुनंदन राजन, हे महाराज, लोग संसार में आते हैं सुख भोगने के लिए, परंतु जीवन में इस चलते हुए जीवन के पथ पर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब विपु जो है शत्रु घेर लेते हैं, सब कुछ रूप देता है, सरल हृदय सरल प्रवृत्ति ये सब समझ।